रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। प्रिय श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम पवित्र कुरान के सूरह बकरा की 154वीं से 157वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद से कर रहे हैं। कारी हैं श्री परहेजगार।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت هم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور جو لوگ ایشور کے مارگ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو جیوت ہیں پرندو تم اسے سمجھ نہیں پاتے، اور نسندے ہم تھوڑے بھے تھوڑی بھوک کچھ جان مال اور اتپاد میں کمی سے تمہاری پریکشا لیں گے، اور ہے پیغمبر آپ دھیروانوں کو شبھ سوچنا دے دیں جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ نسندے ہم ایشور ہی کے لیے ہیں اور اسی کی اور واپس جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے پالنہار کی اور سے آشیرواد اور دیا ہے، اور یہی لوگ صحیح مارگ پر ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شوتاؤ سبھا میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ آج سوموار ہے، اگست کی 7، محرم کی 20 اور مرداد ماہ کی 16 تاریخ۔ کارکرم کا آرمبھ ہم وگت کی ہی بھانتی وشو سماچاروں سے کریں گے۔ وشو سماچاروں کے بعد راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم آپ سنیں گے۔ راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم کے اپرانت ہم آپ کو اپنا ساپتاہک کارکرم سنوائیں گے وشو درپن۔ ہماری آج کی سبھا کا انتم کارکرم ہوگا وہابیت اور واستوکتا۔ तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे इन कार्यक्रमों पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं अगर भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। दोस्तों, हमारी वेबसाइट पर आप अपनी सुविधा के अनुसार विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है parstoday.ir tehran.org/hi. और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे. یہ تہران ہے. اب آپ مریم مہر دادی اور قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچار. ईरान का मानना है कि युद्ध यूक्रेन संकट का समाधान नहीं है. इराक के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पवित्र धारणाओं का अपमान मतभेद फैलाने के लिए किया जा रहा है. सीरिया पर इसराइल ने मिसाइल हमला किया है. ट्रंप का दावा है कि वे ही पूरी दुनिया को विनाश से बचा सकते हैं. और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए.
अमीर अब्दुल्ला अहियान कहते हैं कि युद्ध यूक्रेन संकट का समाधान नहीं है. उन्होंने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान युद्धरत किसी भी पक्ष के सशस्त्र किए जाने का पक्षधर नहीं है. जापान की राजधानी टोक्यो में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने रूस के साथ ईरान के सैन्य सहयोग के संदर्भ में कहा कि तेहरान ने युद्धरत पक्षों में से किसी को भी युद्ध में प्रयोग करने के लिए ड्रोन नहीं दिए हैं. उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि रूस तो दुनिया में हथियार निर्यात करने वाले बड़े देशों में से एक है. ईरान के विदेश मंत्री के अनुसार जापान में जारी रिपोर्टों से पता चलता है कि यूक्रेन युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों में से अधिकांश यूरोपीय देशों की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं.
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ ईरान का व्यापार 300% बढ़ गया है. ईरान के विदेश मंत्रालय के आर्थिक मामलों के प्रभारी महदी सफरी ने पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार आदान प्रदान की स्थिति को सकारात्मक करार दिया है. विदेशी आर्थिक संबंधों के समन्वय के मुख्यालय की बैठक में पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस मुद्दे पर चर्चा की गई.
IRIB की विदेशी सेवा के प्रमुख ने विदेश नीति के क्षेत्र में वर्तमान सरकार की गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया. सोमवार को इस संस्था में राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की उपस्थिति के अवसर पर श्री अहमद नवरोजी ने ईरान प्रेस के रिपोर्टर के जवाब में कहा, विदेश नीति के संदर्भ में देश राष्ट्रपति के दृष्टिकोणों के दृष्टिगत विशेष कर्तव्य नियुक्त किया गया है. उनका कहना था कि इस संस्था को देश की विदेश नीति पर विशेष ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि विदेशी विभाग के सदस्य विदेश नीति के क्षेत्र में 13वीं सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को पूरा करने में अधिक से अधिक प्रयास करेंगे.
इराक के प्रधानमंत्री ने पवित्र कुरान के बारंबार अनादर की निंदा की है. मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रयासों की उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि पवित्र चीजों का अपमान करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा का खंडन और मतभेद फैलाने की कोशिश है. 28 जून को स्वीडन में एक इराकी शरणार्थी सिल्वान मोमिका ने स्वीडिश पुलिस के सहयोग से स्टॉकहोम में इराकी दूतावास के सामने पवित्र कुरान का अनादर करते हुए पवित्र कुरान की एक प्रति जला दी थी. इस जघन्य कृत्य पर इराकी जनता सहित पूरी दुनिया से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन उसके बावजूद उसने एक सप्ताह बाद इस अपमानजनक कृत्य को फिर से दोहराया.
मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान के अनादर को लेकर पश्चिमी देशों द्वारा अपनाई गई अस्पष्ट नीति की मादुरो ने कड़ी निंदा की है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि मुसलमानों की पवित्र पुस्तक के अपमान के संबंध में पश्चिम ने जो भी नीति अपनाई है वो बहुत ही खेदजनक है। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध घृणा फैलाने की कड़े शब्दों में निंदा की। निकोलस मादुरो के अनुसार वे लोग जो मुसलमानों की पवित्र पुस्तक का अनादर करते हैं उनका ये काम बहुत ही निंदनीय है।
ज़ायनी शासन ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके पर एक बार फिर मिसाइल हमला किया। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने दमिश्क के बाहरी इलाके में ज़ायनी शासन के मिसाइल हमले और देश के रक्षा तंत्र द्वारा इन शत्रुतापूर्ण हमलों का मुकाबला करने की सूचना दी है। फारस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने दमिश्क के उपनगरीय इलाकों पर ज़ायनी शासन के हवाई हमले और शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों के खिलाफ देश के हवाई रक्षा तंत्र की कार्रवाई की सूचना दी है।
ज़ायनी सैनिकों ने जनीन नगर पर धावा बोलकर फिलिस्तीनियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। अपनी वर्चस्ववादी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए अवैध ज़ायनी शासन के सैन्य बल आए दिन फिलिस्तीनियों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाइयां करते रहते हैं। इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए इन सैन्य बलों ने सोमवार को हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों से जनीन पर हमला कर दिया। फिलिस्तीन के स्थानीय सूत्रों के अनुसार ज़ायनियों ने इस आक्रमण पर फिलिस्तीनियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके कारण ज़ायनी सैनिकों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। क्षेत्र का घेराव करके ज़ायनी सैनिकों ने कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया और उनको वे अपने साथ पकड़ कर ले गए। आज की इस कार्रवाई में उन्होंने कम से कम 17 फिलिस्तीनी युवाओं को गिरफ्तार किया। दूसरी ओर जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर 17 वर्षीय एक फिलिस्तीनी किशोर ज़ायनी सैनिकों की गोलियों का निशाना बनकर शहीद हो गया।
सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध को लेकर होने वाली बैठक बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित 30 से अधिक देशों की उपस्थिति में सऊदी अरब के जद्दा नगर में यूक्रेन संकट के समाधान के उद्देश्य से की गई बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। रविवार की शाम एक बयान जारी करके जद्दा बैठक को समाप्त किया गया। बैठक में भाग लेने वाले पक्षों का कहना था कि इसमें सकारात्मक प्रस्ताव पेश किए गए। विशेष बात यह है कि इस बैठक में रूस को बुलाया नहीं गया था, किंतु सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि बैठक के परिणामों से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अवगत करवाया जाएगा।
इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सीरिया में अलहूल छावनी बंद किए जाने की मांग की है। कासिम अल आरजी ने बगदाद में ब्रिटेन के राजदूत के साथ भेंट में सीरिया में स्थित अलहूल छावनी को बंद किए जाने की मांग की, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी रह रहे हैं। सीरिया की अलहूल छावनी में 70,000 से अधिक लोग मौजूद हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में दाइश के आतंकवादी पाए जाते हैं। इन 70,000 लोगों में 12,000 विदेशी नागरिक हैं, जिनमें से अधिकांश का संबंध आतंकवादी गुट दाइश से है। विश्व के बहुत से देश इन आतंकवादियों को अपने यहाँ वापस नहीं ले रहे हैं। इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहते हैं कि अलहूल छावनी में रहने वाले विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस बुलवाया जाए और इसी के साथ आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष को भी मजबूत बनाया जाए। इससे पहले इराक के विदेश मंत्री भी कासिम अल अराजी जैसी मांग विश्व समुदाय के सामने रख चुके हैं।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया है कि वर्तमान समय में केवल वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संसार को विनाश से बचा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहायता बटोरते समय ये बात कही है कि संसार में तीसरे विश्व युद्ध को रुकवाने की क्षमता केवल उनके भीतर पाई जाती है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रत्याशी आर्थिक सहायता इकट्ठा करने के लिए हर प्रकार के प्रचारिक हथकंडे अपनाते हैं। इस देश में राष्ट्रपति पद का आगामी चुनाव नवंबर 2024 को आयोजित होगा। साउथ कैरोलिना में आर्थिक सहायता जमा करते समय ट्रंप ने यह दावा किया है कि अगर वे आगामी राष्ट्रपति चुनाव में जीत जाते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हथियार इतने अधिक हो चुके हैं जो पूरी दुनिया का विनाश कर सकते हैं।
नाइजर में सैन्य विद्रोह करने वालों के समर्थन में व्यापक प्रदर्शन किए गए। पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक संगठन इकोवास की ओर से दिए गए अल्टीमेटम के बावजूद नाइजर के लोगों ने सैन्य विद्रोह करने वालों के समर्थन में इस देश की राजधानी में रैली निकाली। इकोवास ने सैन्य विद्रोह करने वालों को 7 दिनों का समय दिया था। नाइजर के लोगों ने रविवार की शाम जनरल सीनी काउची नामक स्टेडियम में संभावित हमले के विरोध में नारे लगाए।
भारत के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुलिस को हेट स्पीच संबंधी अपराधों के बारे में संवेदनशील होने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हालांकि नफरती भाषण की परिभाषा जटिल है, लेकिन बड़ी समस्या जमीनी स्तर पर अमल की है। नफरत भरे भाषणों पर अंकुश लगाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही अदालत ने समन में केंद्र और राज्यों से भी सहायता मांगी और मामले में 2 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने कहा, समाधान जरूर खोजा जाना चाहिए, इन मामलों में हर कोई अदालत नहीं आते रहना चाहिए। हरियाणा के 9 जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आयोजित विरोध प्रदर्शनों के संबंध में अदालत 2 अगस्त को आए एक आवेदन पर विचार कर रही थी। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे फिलिस्तीनी जियालों के जवाबी हमलों से बौखलाए इसराइल के बारे में,
तेल अवीव के केंद्र में फिलिस्तीनी युवा की शहादत,
और फिर बात करेंगे रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की दी गई धमकी के बारे में,
जापान अपने 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर,
और अंत में चलेंगे भारत, जहां कश्मीर की विपक्षी पार्टियों ने भारत में लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरे पर अपनी चिंता व्यक्त की है।
जम्मू कश्मीर के विपक्षी दल पीपल्स डेमोक्रेटिक,
तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिलिस्तीनी जियाले द्वारा अंजाम दी गई शहादत प्रेमी कार्रवाई की। एक ओर इसराइल हर दिन फिलिस्तीन की मजलूम जनता के खिलाफ बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयां करता रहता है, तो वहीं जब भी फिलिस्तीन के प्रतिरोधक बल उसके इस पाशविक हमलों का जवाब देते हैं तो वो तिलमिला जाता है। हालिया दिनों में फिलिस्तीनी जियालों के ताबड़तोड़ जवाबी हमलों से आतंकी ज़ायोनी शासन के होश उड़े हुए हैं। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अख्तर अब्बास।
तेल अवीव के केंद्र में फिलिस्तीनी युवा की शहादत प्रेमी कार्रवाई ने इस शासन के सुरक्षा तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। वेस्ट बैंक में स्थित जेनिन के रोमाना गांव के 27 वर्षीय युवक कामिल अबू बकर ने एक बार फिर अपने शहादत प्रेमी अभियान से अवैध ज़ायोनी शासन के सुरक्षा तंत्र को आश्चर्यचकित कर दिया। शनिवार शाम को कामिल अबू बकर ने तेल अवीव के मध्य में नहला बेन्यामिन क्षेत्र में ज़ायोनी सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। यह ऑपरेशन शुक्रवार शाम अवैध ज़ायोनी शासन के अपराधों पर फिलिस्तीनी युवाओं की त्वरित प्रतिक्रिया थी। शुक्रवार की शाम रामल्ला के दक्षिण पूर्व में बरका गांव पर ज़ायोनी कट्टरपंथियों के एक ग्रुप के हमले में 19 वर्षीय फिलिस्तीनी युवक कुसई मातान शहीद हो गया था। ज़ायोनी समाचार पत्र यदियत अहारनोत ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कार्रवाई को अंजाम देने वाले 27 वर्षीय युवा के बैग में उसकी वसीयत थी और उसमें लिखा था कि वो शहीद कुसई मातान के खून का बदला लेना चाहता है, जिसे ज़ायोनी बस्तियों के कट्टरपंथियों ने मार डाला था। इसीलिए सबसे पहला मुद्दा यह है कि तेल अवीव के केंद्र में ऑपरेशन ज़ायोनी अपराध के लिए फिलिस्तीनी युवाओं के निर्णायक और तत्काल प्रतिक्रिया थी। इस संबंध में फिलिस्तीन के इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास ने एक बयान में इस ऑपरेशन का स्वागत किया और इसे फिलिस्तीनी राष्ट्र और मस्जिदुल अक्सा के खिलाफ ज़ायोनियों के अपराधों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया करार दिया। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि तेल अवीव के केंद्र में ऑपरेशन एक महत्वपूर्ण बिंदु जाहिर करता है कि वेस्ट बैंक में प्रतिरोध अभी भी गतिशील और जीवित है और वेस्ट बैंक विशेष रूप से जेनिन शहर के युवा न केवल इसराइली सैनिकों से डरते हैं बल्कि ज़ायोनी अपराधों का जवाब देने के लिए उनकी इच्छा शक्ति और भी मजबूत हुई है। हमास के बयान में कहा गया है कि तेल अवीव के मध्य में हुआ ऑपरेशन साबित करता है कि वेस्ट बैंक और बैतुल मुकद्दस में प्रतिरोध की आग बुझाने के सभी प्रयास विफल हो गए हैं। फिलिस्तीन के जिहादी इस्लामी आंदोलन ने, जिस पर ज़ायोनी कट्टरपंथियों ने ऑपरेशन के संचालक की सदस्यता का आरोप लगाया, एक बयान में तेल अवीव ऑपरेशन को प्रतिरोध की निरंतरता और गतिशीलता का चिन्ह करार दिया। ज़ायोनी मीडिया द्वारा एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है। इन मीडिया ने तेल अवीव के केंद्र में हुए ऑपरेशन को एक आश्चर्य और इसराइल की सुरक्षा और खुफिया तंत्र के लिए बड़ा झटका करार दिया है। ज़ायोनी शासन के चैनल 13 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तेल अवीव के केंद्र में ऑपरेशन पुलिस और शबाब के लिए एक आश्चर्य था, क्योंकि ये शनिवार को हुआ और ऐसी स्थिति में हुआ जब इस सड़क पर अत्यधिक भीड़ थी।
और अब चर्चा करते हैं जापान पर अमेरिका द्वारा वर्ष 1945 में बरसाए गए परमाणु बमों की बरसी के बारे में। जापान दुनिया का एकमात्र देश है जिसने परमाणु बम से होने वाली क्षति को देखा है। मानव इतिहास की इस अभूतपूर्व त्रासदी के बावजूद आज भी अमेरिका अपनी वर्चस्ववादी नीतियों को आगे बढ़ाने पर अड़ा हुआ है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम।
जापान अपने दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु हमलों की बरसी मना रहा है। इस अवसर पर जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु हमले का दंश झेला है। इसी वजह से उसकी भरपूर कोशिश रहती है कि दुनिया को परमाणु हथियारों से पाक कर दिया जाए और अब किसी अन्य राष्ट्र को ये दंश नहीं झेलना पड़े। जापानी प्रधानमंत्री के इस बयान से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हिरोशिमा पर अमेरिकी हमले की वर्षगांठ पर रूस द्वारा परमाणु हमले की धमकी के संदर्भ में कहा था, विश्व समुदाय को इस तरह की धमकियों का एकमत होकर विरोध करना चाहिए। जापान के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से परमाणु हमले की संभावना की ऐसी स्थिति में कड़ी निंदा की है जब वे अमेरिका द्वारा यूक्रेन को क्लस्टर बम दिए जाने पर पूर्ण रूप से खामोश हैं। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी राडारों ने दक्षिण की ओर से आते हुए अमरीकी बम वर्षकों को ट्रेस कर लिया था, लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ ही देर में कयामत बनकर टूट जाने वाले विमानों के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। 8:15 पर अमरीकी वायुसेना के B-29 विमान एनोला गे ने 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन का नीला सफेद एटम बम लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया। लिटिल बॉय को एनोला गे से नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य हाओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो शीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गईं। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक क्षण में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मौत की गर्त में समा गए। 9 अगस्त 1945 को जापान के एक और नगर नागासाकी पर जब B-29 बम वर्षक ने दूसरा एटम बम गिराया तो कई किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज ध्वस्त हो गई। मानव इतिहास की इस अभूतपूर्व त्रासदी के बावजूद आज भी अमेरिका अपनी वर्चस्ववादी नीतियों को आगे बढ़ाने पर अड़ा हुआ है, तो वहीं जापानी अधिकारी इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं कि इस त्रासदी के 78 साल बाद भी वो अमेरिका के वर्चस्व से आजाद नहीं हो सके हैं। हालांकि इस प्रक्रिया ने जापान को घरेलू और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त कर रखा है जो कभी भी उसके और पूरे क्षेत्र के लिए एक गंभीर संकट का रूप ले सकती है।
और अब रुख करते हैं भारत का। بھارت پرشاست کشمیر کی وپکشی پارٹیوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے کیندر سرکار رویہ اپنائے ہوئے ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں لوکتنتر اب نہیں بچا ہے بلکہ کوئی ایک وشیش ویکتی اس دیش کو چلا رہا ہے۔ شری نگر سے ہمارے سمواددتا سپتے حسن کی رپورٹ۔
جموں کشمیر کے وپکشی دل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے مہا سچیو ڈاکٹر گلام ڈی بی ہانجورا نے کہا ہے کہ بھارت وشو بھر میں سب سے بڑی ڈیموکریسی مانی جاتی ہے، پرنتو جس طرح سے موجودہ رجیم ویوہار کر رہی ہے اسے ایسا لگ رہا ہے کہ جموں کشمیر سہت انیہ راجیوں میں کوئی ویکتی صرف پرشاسن چلا رہا ہے اور یہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ سری نگر میں ایک سمواددتا سمیلن کو سمبوجت کرتے ہوئے ڈاکٹر گلام نبی ہانجورا نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو جو گھٹنا گھٹی جسے ہم انکانسٹیٹیوشنل کہتے ہیں اور کہتے آئے ہیں اور ہم اس کے ورودھ میں ابھیان بھی چلا رہے ہیں، اس گھٹنا کے حوالے سے ہم نے اپنا پکش رکھنے کے لیے سری نگر کے پرشاسن سے انومتی مانگی تھی پرنتو ہمیں نہیں دی گئی، اور جو لوگ جشن منانا چاہتے ہیں انہیں جشن منانے کی انومتی دی گئی، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام لیڈرشپ کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا اور ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات بل دے کر کہی کہ پی اے جی ڈی جو بنا ہے اس میں پی ڈی پی برابر کی باغیدار رہے گی اور جموں کشمیر کی جنتا کے ہت میں وہ اس ایکتا کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ کافی سپیکولیشن ہو رہی تھی کہ پی اے جی ڈی میں اب متبید پیدا ہو گئے ہیں اور یہ بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، پرنتو غلام نبی ہاجورا نے اس کا کھنڈن کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کی جنتا کے ہت میں وہ اس گٹھ بندھن کو چلانے کا ہر سمبھو پریاس کریں گے، اور ان کی نیتا محبوبہ جی نے یہ بات بل دے کر کہی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی ہے پرنتو ایکتا کے حوالے سے جو پریاس ہو رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں جاری یاچکاؤں پر ٹٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ آشا ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں نیائے ملے گا، پرنتو ہم نے کوئی ایکسپیکٹیشن بھی بڑی نہیں رکھی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو کچھ ہم سے چھینا گیا وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اسے واپس لانے کے لیے ہم سب لوگوں کو ایکجٹ ہو کر ابھیان چلانا ہوگا۔ اس اوسر پر انہوں نے کہا،
یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت مانی جاتی ہے، جو وپکش پارٹیز یہاں پہ ہیں ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ یہی نہیں کہ پرمیشن نہیں دیا گیا، بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے سبھی لیڈرز، محبوبہ جی ہوں، ہمارے جنرل سیکرٹریز ہوں، ہمارے وائس پریزیڈنٹس ہوں، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہوں، سب کو یا تو گھروں میں نظر بند کیا گیا یا تھانوں میں نظر بند۔ اور دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر شام کو بی جے پی والوں نے کہا کہ کوئی گرفتار نہیں تھا، کسی بھی پی ڈی پی کے ورکر کو، کسی بھی پی ڈی پی کے لیڈر کو گرفتار نہیں کیا گیا، جبکہ اس بات کے ہمارے پاس ثبوت ہیں، کئی ویڈیوز ہمارے پاس آ گئے جن میں یہ دکھایا گیا کہ کئی ہمارے لیڈرز گھروں میں نظر بند ہیں، کئی ہمارے لیڈرز تھانوں میں بند ہیں۔ یہاں میں اگر ذکر کروں گا، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بڈگام ہیں، یہ گھر میں نظر بند تھے۔
اس بیچ انیہ وپکشی دلوں جس میں عوامی نیشنل کانفرنس، عوامی اتحاد اور سی پی آئی ایم شامل ہیں نے آج ایک بار پھر یہ بات دہرائی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو یاچکائیں ان کے دلوں نے داخل کی ہے اس پر سنوائی جاری ہے، اور انہوں نے بھی یہ آشا پرکٹ کی ہے کہ جموں کشمیر کے ہت میں نرنے آئے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ کردار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کا سمرتھن کرتے ہیں اور وہ انکانسٹیٹیوشنل ہونے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی جنتا کی نظریں اب اور صرف سپریم کورٹ کی اور ہیں۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
دوستوں، راجنیتک چرچا کا یہ دینک کارکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، اب پیش ہے کارکرم وشو درپن۔ विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे इस्लामी गणराज्य ईरान के ताजा हालात और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के किरदार की।
श्रोताओ, हालिया दिनों पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों का एक डेलीगेशन ईरान के दौरे पर आया और उसने अलग अलग विभागों को देखा। इसके बाद पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस बीच एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये नजर आई कि ईरान की एक तस्वीर पश्चिमी मीडिया दिखाता है और ये तस्वीर पश्चिमी मीडिया से दूसरे इलाकों के मीडिया में भी पहुंचती है। वो तस्वीर बिल्कुल अलग तस्वीर है। ईरान का दौरा करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों ने बड़ी हैरत जाहिर करते हुए एक बात कही कि ईरान तरक्की के मामले में बहुत से यूरोपीय देशों से आगे है। इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरान पश्चिमी देशों की दुश्मनी और पाबंदियों के बावजूद हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, और साथ ही साथ इस तथ्य और प्रमाणित और साबित किया जा सकता है कि तरक्की के लिए पश्चिम पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार नज़ीर लगारी का कहना है कि अलग अलग मैदानों में ईरान की तरक्की को देखकर हैरत होती है।
उस एज से पत्थर और कांसी के दौर से लेकर आज तक के दौर में जो ईरान में इर्तका हुआ है और ईरान का जो फैलाव है वो हमारे सामने आया है, और फिर इस्लामी दौर का भी एक बड़ा एक वक्त जो रहा है तरक्की होती रही वो हमारे सामने आई है। और उसके बाद हमने ईरान के मुख्तलिफ इदारों के दौरे किए हैं, और हम ईरान की जो बड़ी न्यूज़ एजेंसी है ईरना उसके दफ्तर में गए और वहाँ पर हमने जाकर उनसे मालूमात का भी तबादला किया और उनके वर्किंग के बारे में जाना। हमें ये जानकर खुशी हुई है, जो बात बाहर का मीडिया नहीं बताएगा कभी भी, इस बात को नहीं लाएगा, मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई, मैंने वहाँ मालूम भी किया कि हमें अक्सरियत नज़र आई कि ख़वातीन बैठी हुई हैं और न्यूज़ रूम के अंदर, और न्यूज़ रूम के हर शोबे के अंदर, यानी पॉलिटिकल शोबे के अंदर, सियासी शोबे के अंदर, खेलों के शोबे के अंदर, मजहबी शोबे के अंदर, और उसके अलावा फिल्म के शोबे के अंदर, हम जहाँ जहाँ भी गए हमें मालूम ये हुआ कि वहाँ पर ख्वातीन बड़ी तादाद में, बल्कि वाफिर तादाद में, यानी उससे मर्द हजरात से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर मौजूद थी और पूरा एक्टिवली काम करती। बल्कि मुझे तो हैरत हुई कि जो सियासत का शोबा है जिसमें सियासत की प्रेसिडेंट वो आपके पार्लियामेंट और जो सुप्रीम कोर्ट को और जो दीगर इदारों को कवर करते हैं, उन्होंने उसकी जो डेस्क की इंचार्ज थी वो एक खातून थी, और बहुत से शोबों को ख्वातीन हेड कर रही थी। ख्वातीन के लिए स्पेस इतना ज़्यादा मैंने तसव्वुर नहीं किया था, बल्कि मैं यूरोप गया हूँ, वहाँ पर देखा है मैंने, और दुनिया के दीगर ममालिक में गया हूँ मैं, श्रीलंका, इंडिया और मालदीव और यहाँ इस जन के बहुत से मुल्कों में मैं गया हूँ, तो मैंने इतना स्पेस ख्वातीन के लिए नहीं देखा है, जिनके लिए इतना बड़ा स्पेस हो। तो वो मुझे देखकर हमेशा की तरह ये बड़ी अजीबोगरीब हैरत भी हुई, साथ में खुशी इस बात की हुई है कि जनाब जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा है कि ख्वातीन का स्पेस ही नहीं है, ख्वातीन को आज़ादी नहीं है ईरान के अंदर, ख्वातीन तो चल ही नहीं सकती।
ईरान के इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई पूरी इस्लामी दुनिया का आह्वान करते हैं कि वो ईरान के उदाहरण को सामने रखे कि कैसे ईरान ने पश्चिमी देशों की पाबंदियों के बावजूद तरक्की की और विज्ञान के मैदान में तरक्की करते हुए खुद को बुलंदियों तक पहुंचाया है।
ما در اینجا این کار رو انجام دادیم. ما لحاظ رتبه علمی درجات خودمون رو به مراتب بالا آوردیم. همه این کارها رو در دوران تحریم انجام دادیم.
इस्लामी क्रांति के नेता इसके साथ ही बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि पश्चिम ने विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की हासिल की और उसने दुनिया में ताकत हासिल की, लेकिन चूंकि उसके पास ईमान नहीं था, अखलाक नहीं था, इसलिए उसने दूसरों पर जुल्म किए।
منتها چون ایمان نداشتن چون ظرفیت نداشتن از این علم به نحو بدی استفاده کردن।
ईरान में इस्लामी इनकलाब आने के बाद महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय रूप से काम हुआ, जिसका नतीजा यह है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार मंजर हुसैन नकवी कहते हैं कि उन्होंने इससे पहले भी ईरान के दौरे किए हैं, मगर उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि महिला सशक्तिकरण की मुहिम ईरान में तेजी से आगे बढ़ रही है।
तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं अपने गुज़िश्ता विजिट से और इस विजिट से, तो देख के इतनी हैरानी हो रही है, और ख़ास तौर पे जैसे अभी लगारी साहब ने जिक्र किया ख्वातीन की एम्पावरमेंट, अभी इरना में उन्होंने हमें बताया था जो उनके एडिटर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, تو کہ یہاں پر 60% خواتین ہیں امپلائمنٹ. ہر طرف امپاورمنٹ دیکھی خواتین کی, ہر طرح کی مکمل لبریشن, مکمل آزادی, کسی قسم کی کسی خاتون کے ساتھ کوئی پابندی زیادتی نظر نہیں آ رہی. یہاں تک کہ میں نے دیکھا خواتین ہر شعبے میں, جہاز کے شعبے میں, ایئرپورٹ پر, سول ایویشن میں, ہوٹلز میں, بازاروں میں, دکانوں پر, شاپس پر, ہر طرف. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بس ڈرائیونگ کرتے ہوئے, میں نے کل ایک باورچی خاتون کو دیکھا, تو میں نے لغاری صاحب سے کہا دیکھیں یہاں خواتین بس ڈرائیونگ بھی کر رہی ہیں. تو اتنا زیادہ آزادی, اور لیکن ہو کیا رہا ہے کہ مغربی پروپیگنڈا, مغربی ذرائع ابلاغ جس طرح سے پاکستان اور ایران کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں, صرف ایران کے خلاف نہیں ہو رہا مغربی پروپیگنڈا, پاکستان کے خلاف بھی ہو رہا ہے, ایران کے خلاف بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور چائنا کے خلاف ہو رہا ہے. تو جو مغربی ادارے ہیں اور بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں, اور کیونکہ میری چائنا کے ساتھ کافی انٹریکشن ہے, میں نے ان کی 3 کتابیں میں نے ان پر لکھی ہیں, ایک ترکی پر لکھی ہے, اب انشاءاللہ ایران کی طرف بھی میری کتاب آئے گی بہت جلد انشاءاللہ. تو میری ایران والوں سے بھی بات ہوتی ہے, ترکی والوں سے بات ہوتی ہے, اور خاص طور پہ چائنا والوں سے بھی, کہ وہ کس طرح, وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری خبر کبھی دوسری سورس سے نہ لیں, صرف سنہوا سے لیں, چائنا ڈیلی سے لیں, ان کے اس سے لیں. تو وجہ کیا ہے کہ مغربی پروپیگنڈا, جیسے میں یہاں ہم حق دیکھ رہے ہیں, گراؤنڈ کچھ اور ہے. سب سے بڑی اہمیت یہاں پر آپ کی جو لوکل باڈیز ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے پورے تہران میں کہیں گندگی نظر نہیں آئی, اتنا ٹریفک ہے مگر مینجڈ ہے, کہیں بد نظمی نہیں ہے. تو اور پھر آپ نے جس طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, ہم نے 2-4 چیزیں دیکھی ہیں, اور پھر ہم نے وہ اسلامک ریولیوشنری میوزیم دیکھا, اور اس کے بعد ہم نے کتاب کا وہ دیکھا, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ آپ ایران آنے والی جنریشن پہ فوکس کر رہے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کو آگے لے کر آ رہا ہے, اور ان کو اتنی فیسلٹیز اور ان کے لیے اتنا کچھ بنا کر دے دیا ہے کہ وہ اس سے استفادہ کریں اور آگے چلیں. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو, گیمز ہو, لٹریچر ہو, ہر شعبے میں نیکسٹ جنریشن تیار ہو رہی ہے.
منظر حسین نقوی کہتے ہیں کہ ایران اپنی آنے والی نسل پر فوکس کر رہا ہے, اور اسے مضبوط بنانے کے لیے الگ الگ کھیتروں میں بھرپور سنسادھن مہیا کرا رہا ہے.
وش درپن. انتراشٹریہ گھٹنا کرموں کی نبض ٹٹول کر وش بھر میں ہونے والے پریورتنوں کی تہ تک جانے والا کارکرم وش درپن. ہر ہفتے سوموار کو
مہیلاؤں کے بارے میں امام خمینی بالکل الگ انداز سے اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں. وہ مہیلا اور پرش کی برابری کی بات کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ سماج میں مہیلا کا رول پرش کے رول سے کہیں اوپر ہے, کیونکہ ایک تو وہ سارے میدانوں میں سکریہ ہیں, اور دوسرے یہ کہ ہر کھیتر میں سکریہ ہو کر سارتھک بھومیکا نبھانے والے ورگ کی پرورش بھی یہی عورتیں اپنی گود میں کرتی ہیں.
نقش زن در جامعہ بالاتر از نقش زن در نقش مرد است.
امام خمینی کا کہنا ہے کہ سماج میں ماں کی بھومیکا اور سیوا ایک استاد سے کہیں ادھک شریشٹھ ہے.
عشق‌های فعال را در دامن خودشون تربیت میکنن.
پاکستان کے ورشٹھ ٹیکاکار نذیر لغاری ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جب پشمی میڈیا جنمت کو گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے, اور ایران جیسے دیشوں کے بارے میں جو پشم کی نیتیوں کا انوسرن نہیں کرتے زہریلا پروپیگنڈا کرتا ہے, تو ضروری ہے کہ انیہ دیشوں کے بیچ میڈیا کے استر پر سمنوے ہو. اسلامی انقلاب کے نیتا آیت اللہ العظمیٰ خامنے کہتے ہیں کہ پابندیوں کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اپنی ضرورت کی چیزیں خود بنائیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں.
ایران کے جو ٹیلی ویژن ہیں, جو نیوز ایجنسیز ہیں, ان کے نمائندے پاکستان کے تمام شہروں میں ہونے چاہیے, اور اسی طرح سے پاکستان کے اخبارات اور ٹیلی ویژنس کے نمائندے یہاں ہونے چاہیے ایران کے, اور ایران کے تمام جو مرکزی شہر ہیں, تجارتی, صنعتی, مذہبی مراکز ہیں, وہاں پر پاکستان کے نمائندے ہونے چاہئیں جو اپنے اخبارات کو خبریں بھیجیں, اور وہاں سے پاکستان کی خبریں جو ہیں وہ ایرانی نمائندے خود بھیجیں, تو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو. اور اس کے علاوہ جب تک یہ انتظام ہو ہمیں ایک دوسرے کے نیوز ایجنسیز کو اور ایک دوسرے کے میڈیاز کو جو ہے وہاں سے ہمیں لینا چاہیے. آپ کے یہاں ایک سسٹمیٹ ریگولیٹ میڈیا ہے اور اس کو باقاعدہ ایک پورے سسٹم کے ساتھ ریگولیٹ کیا جاتا ہے. وہ شتر بے مہار کی طرح نہیں ہے اور وہ ایسا بھی نہیں ہے. میں نے یہاں آ کر سوشل میڈیا یا دوسری چیزیں ہیں ان کو دیکھا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سیلاب آ گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں اور جھوٹ ڈال رہے ہیں. ایسی کوئی چیز ایران میں نظر نہیں آئی. ایران میں ایک سلجھا ہوا معاشرہ, ایک بہت بہت ترقی کرتا ہوا معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی ریگولیٹ ہو کر چل رہی ہے اور پورے انتظام اور انسلام کے ساتھ چل رہی ہے. شتر بے مہار نہیں ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ دونوں ممالک کے میڈیا ہاؤسز کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے.
اسلامی انقلاب کے نیتا آیت اللہ خامنئی کی اس بات کو بنیاد بنا کر اگر دنیا کے مسلم راشٹر اور وہ راشٹر جو پشمی دیشوں کی زیادتی کا نشانہ بنے ہیں اپنی کشمتاؤں کو نکھارنے پر دھیان دیتے ہیں اور آپسی سہیوگ کے راستے تلاش کرتے ہیں تو نشت روپ سے انہیں کامیابی ملے گی. دراصل ترقی کے لیے بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ قوم کو اپنی ضرورتوں کو صحیح سے پہچاننے کا موقع ملے, اسے اپنی کشمتاؤں کے بارے میں بھی اچھی طرح معلومات ہو. پھر اگر ایک سے ادھک قومیں آپس میں سہیوگ کے لیے تیار ہو جائیں تو بڑی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں. اسلامی گڑراج ایران نے اپنے استر پر بڑی کامیابیاں حاصل کر کے دکھا دیا ہے اور ایک جیتے جاگتے ادہرن کے روپ میں دنیا کے سامنے کھڑا ہے. اب رہ گئی بات پشمی میڈیا کے رویے کی, تو اس سے دشمنی کے علاوہ کسی چیز کی آشا رکھنا بھی صحیح نہیں ہوگا. میڈیا کا کھیتر بھی ایسا ہے جہاں اسلامی دیشوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آنا ہوگا اور اپنے مدوں کو سلجھانا ہوگا. شوتاؤ, کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے. انوتی دیجیے.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. دوستو, پیش ہے سبھا کا انتم کاریکرم وہابیت اور واستوکتا.
وہابیت اور واستوکتا.
دوستو, کاریکرم وہابیت اور واستوکتا کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں سید میسم اور سواتی کا سلام سویکار کیجیے.
دوستوں, کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ خطروں سے بچنے کے لیے اپرادھی کبھی کبھی بہت بڑے جھوٹ بولتے ہیں. تاناشاہ اڈولف ہٹلر کا کہنا ہے کہ بڑے جھوٹ کے بھیتر ہمیشہ ہی وشواس کرنے کی شکتی نہت ہوتی ہے. ہٹلر کا یہ بہت ہی مشہور جملہ ہے. تاناشاہ ہٹلر کے ساتھ ہی کئی راجنیتا بھی ہٹلر کے اس واقعے میں بھروسہ رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جھوٹ کو اتنا ادھک دوہراؤ کہ وہ سچ لگنے لگے. اتہاس میں ایسا کئی استھانوں پر دیکھا گیا ہے جہاں پر جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ نیتی اپنائی گئی. پرتھم وشو یدھ 1914 سے آرمبھ ہوا تھا. یہ 28 جولائی سن 1914 کو شروع ہوا اور 11 نومبر 1918 کو سماپت ہوا. اس کو گریٹ وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے.
پہلے وشو یدھ کے دوران برٹین کی تتکالین سرکار اور سعودی شاسن کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا. سعودی عرب کے تتکالین شاسک عبدالعزیز نے برٹین کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے کے نیچے یہ لکھا تھا کہ میں عبدالعزیز پوتر عبدالرحمان ہزار بار اس بات کو سویکار کرتا ہوں کہ فلسطین کو یہودیوں کو دیے جانے سے مجھے کوئی آپتی نہیں ہے. پہلے وشو یدھ کے دوران برٹین کی تتکالین سرکار اور سعودی شاسن کے بیچ ہونے والے سمجھوتے کے لگ بھگ 24 ورش کے بعد برٹین کے تتکالین پردھان منتری چرچل نے زائونیوں کے ویشوک سنگھن کے پرمکھ وائزر مین سے کہا تھا کہ میں نے یہودیوں کے لیے ایک یوجنا تیار کی ہے جو دوسرے وشو یدھ کے سماپت ہونے سے پہلے لاگو نہیں کی جا سکتی.
उन्होंने कहा कि मैंने ये योजना बनाई है कि मध्य पूर्व में आले सऊद को प्रमुखता दी जाए, किंतु इसकी शर्त यह है कि आले सऊद पहले तुमसे विचार विमर्श करे। जब भी ये योजना पूरी होगी उस समय तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ चाहो वह उनसे ले सकते हो। हम भी इस काम में तुम्हारे साथ देंगे। खास बात यह है कि फिलहाल इस बात को छिपाकर रखो। इस विषय पर मैं अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से भी बात करूंगा।
दूसरा विश्व युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चला, जो 1939 से आरंभ होकर 1945 तक जारी रहा। लगभग 70 देशों की सेनाएं इस युद्ध में शामिल थीं। दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 4 करोड़ आम लोग और 2 करोड़ सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध के दौरान बहुत बड़ी संख्या में विश्व के कई नगर नष्ट हुए और बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध से ब्रिटेन को जो सबसे बड़ा लाभ हुआ वो फिलिस्तीन पर वर्चस्व पैदा करना था। ब्रिटेन ने 2 वर्षों तक अपनी सेना को फिलिस्तीन में रखा। इस प्रकार से उसने पूरी दुनिया से यहूदियों के फिलिस्तीन पलायन की भूमिका प्रशस्त की।
सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित करके फिलिस्तीनी क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। नए गठित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों को यहूदी, अरब और अंतर्राष्ट्रीय हिस्सों में बांट दिया। हालांकि राष्ट्रसंघ का यह प्रस्ताव इस अंतर्राष्ट्रीय संघ के स्वीकृत कानूनों के विपरीत था, किंतु अमेरिका ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए इसको जबरदस्ती पारित करवाया। अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी देशों पर अपना प्रभाव डालकर इस प्रस्ताव को पास कराने में सहायता ली। दूसरी ओर पूर्व सोवियत संघ ने भी इसका समर्थन किया था।
विशेष बात यह है कि उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो प्रस्ताव पेश किया था उसका समर्थन अधिकांश फिलिस्तीनी नहीं कर रहे थे। इस प्रस्ताव के पारित होने और अधिकांश फिलिस्तीनियों द्वारा इसका विरोध करने के बावजूद कुछ महीनों के बाद ज़ायूनियों ने फिलिस्तीन के भीतर अपने तथाकथित देश की घोषणा कर दी। ये विषय अधिकांश फिलिस्तीनियों विशेषकर मुसलमानों के क्रोध का कारण बना। पहले विश्व युद्ध के समाप्त होने और फिलिस्तीनियों की भूमि के अधिग्रहण के दौरान फिलिस्तीन की धरती पर रहने वाले अरबों को आए दिन अपमान और निराधार का सामना करना पड़ा। इन बातों ने मुसलमानों के दिलों में नफरत भर दी थी।
इसी के साथ फिलिस्तीन की भूमि पर कब्जे ने इस क्रोध को अधिक भड़का दिया था। सारे ही मुसलमान विशेषकर फिलिस्तीनी अपनी भूमि की स्वतंत्रता के इच्छुक थे। यही कारण है कि अवैध ज़ायोनी शासन के गठन की घोषणा के एक ही दिन के बाद अरबों की सेना ने फिलिस्तीन पर धावा बोल दिया। आरंभ में उसको सफलता मिली, किंतु किन्हीं कारणों से उसको बाद में पराजय नसीब हुई। इस पराजय के कारणों को जानने के लिए इस हमले से कुछ पहले के वर्षों में जाना होगा।
अरबों और ज़ायोनियों के बीच युद्ध के आरंभ से लगभग 3 साल पहले ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉबर्ट एंथनी एजेनर ने एक विचित्र पेशकश की थी। उसने अरब संघ के गठन का प्रस्ताव पेश किया। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ब्रिटेन को उन लोगों को एकजुट करने का ख्याल क्यों आया जो वर्षों से उसके साथ संघर्षरत थे। स्वयं ब्रिटेन की भी उनके बारे में अच्छी सोच नहीं थी। अरब संघ का गठन इसलिए किया गया था ताकि अरब जगत की समस्याओं का समाधान किया जा सके। अरबों को एकजुट इसलिए किया जा रहा था कि उनके भीतर एकता पैदा हो और उन्हें उनके अधिकार मिल सकें। अब अरब संघ को बने दशकों बीत रहे हैं, लेकिन इसे जो सोचकर बनाया गया था उसे व्यावहारिक होते अब तक नहीं देखा गया है।
बहुत से अरब टीकाकारों का मानना है कि अरब संघ से अरब जगत को किसी भी प्रकार का कोई लाभ तो हुआ नहीं, बल्कि उल्टे यह संघ कई अवसरों पर उनके लिए समस्याओं का कारण बना है। अरब जगत के एक टीकाकार अली अल ख्यात इस बारे में कहते हैं कि अपने गठन के समय से अरब संघ आज तक कोई ऐसा काम नहीं कर सका है जिसकी अभिलाषा वहां के लोगों के मन में रही है। इस समय लोग इस संघ को शंका की दृष्टि से देखते हैं। इन लोगों को उस पर कोई भरोसा नहीं है। उनके अनुसार वर्षों से अरब संघ अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा है।
अपने एक संबोधन में अवैध ज़ायोनी शासन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैरियल शेरून ने कहा था कि अरब संघ में जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं वे मेरी नज़र में पत्तों पर लिखी गई बातों के बराबर भी महत्व नहीं रखते। जानकारों का मानना है कि इसका मुख्य कारण अरब संघ के कुछ देशों का अमेरिका तथा ब्रिटेन के सामने समर्पण है। ये वे देश हैं जो ना तो कभी फिलिस्तीन समस्या के बारे में कोई स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं और ना ही वे सीरिया तथा इराक जैसे हालिया संकटों के समाधान में कुछ करने देते हैं।
अरब संघ का सबसे अधिक खर्च उठाने के कारण सऊदी अरब स्वयं को इस संघ का स्वामी समझ बैठा है। उसने कई बार अरब संघ के महासचिव को उनके फैसले बदलने और अपने दृष्टिगत फैसला करने के लिए बाध्य किया है। इस हिसाब से यह संघ केवल एक मुखौटा बनकर रह गया है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन के प्रस्ताव पर अरब संघ के गठन का फैसला उन झूठ में से एक है जिनको खतरों से बचने के लिए अपराधी कभी कभी बोलते हैं। हालांकि इस बार झूठ केवल खतरों से बचने के उद्देश्य से नहीं बोला गया, बल्कि इस बार एक नया शैतानी काम करने के लिए इसे बोला गया। हालांकि यह पहले भी कई अलग अलग रूपों में रह चुका है, किंतु इस बार इसका मुख्य लक्ष्य मुसलमानों के बीच में मतभेद डालकर अपना उल्लू सीधा करना था।
ब्रिटेन और अमेरिका की एक नीति यह है कि वे किसी चीज़ को उसके नाम का प्रयोग करते हुए नष्ट कर देते हैं। जैसे वे आज़ादी के नाम पर राष्ट्रों को गुलाम बनाते हैं, विकास के नाम पर देशों की धन संपदा को लूटते हैं, मानवाधिकारों की रक्षा की आड़ में मानवाधिकारों का खुलकर उल्लंघन करते हैं तथा एकता और यूनिटी के नाम पर राष्ट्रों के बीच मतभेद पैदा करते हैं। डिवाइड एंड रूल उनकी ही एक पॉलिसी का नाम है। सऊदी अरब के एक शासक गुजरे हैं, शाह फैसल। शाह फैसल ने अपनी एक किताब में लिखा है कि हम और यहूदी आपस में चाचाजात भाई हैं। वे लिखते हैं, क्योंकि यहूदी हमारे चचेरे भाई हैं, इसलिए हम उनके साथ शांति और आराम के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं।
वहाबियों ने इस शांति और आराम को हासिल करने के लिए इस्लाम के सारे ही कायदे कानून को ताक पर रख दिया और इस संबंध में जघन्य अपराध किए। उन्होंने कभी भी ज़ायनियों के विरुद्ध कोई युद्ध नहीं किया। यह वहाबी कभी भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप में ज़ायनियों के मुकाबले में नहीं आए। अब वे अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं कि ज़ायनियों और अरबों के बीच संबंध स्थापित हो जाए। उनके इन प्रयासों का परिणाम यह निकला कि कुछ अरब देशों ने इसराइल के साथ अपने संबंध सामान्य करने के लिए समझौते किए। इन समझौतों में से सबसे नया समझौता इब्राहिमी समझौता है। यह वह समझौता है जिसके अंतर्गत पहले मिस्र और जॉर्डन ने और बाद में संयुक्त अरब इमारात तथा बहरन ने ज़ायोनी शासन को मान्यता देते हुए उनके साथ आधिकारिक रूप में कूटनैतिक संबंध स्थापित किए।
हालांकि शांति, स्थिरता और एकता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी भी स्थिति में अत्याचारों, नरसंहारों, जातिवादी कार्रवाइयों और मारकाट को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो लोग इन घटनाओं का कारण बने हैं उन्हें गले लगाया जाए। वे वास्तव में भेड़ की खाल में भेड़िए हैं जो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसे में उन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के लोगों के साथ शांति की बात करना वास्तव में एक प्रकार का अत्याचार है। ऐसे लोगों से दोस्ती के स्थान पर संघर्ष किया जाना चाहिए। इस बार वे शांति और दोस्ती के नाम पर नरसंहार और अत्याचार करना चाहते हैं, जिससे शांति नहीं बल्कि अशांति उत्पन्न होगी। दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अब सभा के समापन से पूर्व मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर।
ईरान का मानना है कि युद्ध यूक्रेन संकट का समाधान नहीं है। इराक के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पवित्र धारणाओं का अपमान मतभेद फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सीरिया पर इसराइल ने मिसाइल से नया हमला किया है। ट्रंप का ये दावा है कि वे ही पूरी दुनिया को विनाश से बचा सकते हैं। दोस्तों, हमारे आज के प्रयास आपको कैसे लगे, इस बारे में आप अपने विचारों से हमें अवगत करवाते रहिए और हमें बताइए कि हम इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं। अपने विचारों को हम तक पहुंचाने के लिए आप ईमेल को माध्यम बना सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔